अनोखी है, अनमोल है, सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ अब नानी हमें सुनाएंगी,
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ, क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
नानी कहानी सुनाओ ना प्लीज।
अच्छा ठीक है बच्चों, तो सुनो। ये उन दिनों की बात है जब लोगों के पास जादुई शक्तियाँ हुआ करती थी। अच्छे लोग अपनी शक्तियों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे और बुरे लोग बुरे कामों के लिए।
वाओ नानी, तो ये कहानी में जादू होता है?
हाँ बच्चों, तो शुरू करें।
हाँ।
एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था शाहिद और छोटे बेटे का नाम था हमिद। दोनों भाई अपने अब्बू से बहुत प्यार करते थे और वो जब बड़े हुए तो बूढ़े किसान ने उनसे कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरे बच्चों, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर खेत वगैरह का सारा काम अपने जिम्मे ले लो। मगर खेतों का काम संभालने से पहले मेरी इच्छा है कि पहले तुम दोनों दुनिया की सैर कराओ।
नानी, बूढ़े किसान ने उन्हें घूमने जाने के लिए क्यों कहा?
वो इसीलिए बच्चों कि नई नई जगह जाने से हमें अलग अलग अनुभव होते हैं और ये अनुभव हमें हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं।
ओह, फिर क्या हुआ नानी?
अगली सुबह अपने अब्बू के कहने पर दोनों भाई सफर के लिए निकलने ही वाले थे कि बूढ़े किसान ने दोनों भाइयों को एक एक तीर कमान और एक एक कुत्ता साथ ले जाने को कहा ताकि वो दुश्मन और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। दोनों भाइयों ने अपने अब्बू को खुदा हाफिज कहा और अपने सफर के लिए रवाना हो गए। अब बहुत देर चलते रहने के बाद बड़े भाई शाहिद ने कहा, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ तो शहर का नामो निशान नहीं है। ये सुनकर छोटे भाई हमिद को अपना खाना खत्म होने का डर सताने लगा, मगर दोनों भाई हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने पर उनको 12 सिंगों का एक जोड़ा दिखाई दिया।
नानी, ये 12 सिंगा क्या होता है?
बच्चों, 12 सिंगा एक प्रकार का हिरन होता है। उसके सिंगों के आकार के कारण हम उसे 12 सिंगा कहते हैं।
अच्छा, फिर क्या हुआ नानी?
फिर दोनों भाइयों ने उनके शिकार के लिए अपने अपने तीर कमान निकाल लिए और जैसे ही वो उन पर तीर चलाने वाले थे कि दोनों 12 सिंगा इंसानों की तरह बोलने लगे।
क्या कहा उन्होंने नानी?
12 सिंगों के जोड़े ने कहा कि हम दोनों को ना मारो भाई, आप अपने साथ हमें सफर पर ले चलो, समय आने पर हम आपके काम आएंगे। दोनों भाइयों ने जब ये सुना तो उन्होंने 12 सिंगा को अपने सफर का साथी बना लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को दो भेड़े नजर आई। फिर दोनों भाइयों ने फौरन अपने तीर कमान संभाल लिए और अभी वो तीर चलाने ही वाले थे कि अचानक भेड़ों ने भी इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया।
क्या, भेड़े भी इंसानों की तरह बोलने लगी?
हाँ बच्चों, और उन्होंने भी वही कहा जो 12 सिंहों ने कहा था। तुम्हें याद है कि 12 सिंहों ने क्या कहा था?
हाँ, कि आप हमें प्लीज मत मारो, हमें आप सफर पर अपने साथ ले चलो, हम आपके काम आएंगे।
वेरी गुड।
फिर नानी, क्या शाहिद और हामिद ने भेड़ों को भी अपने साथ ले लिया?
हाँ बच्चों, और ना सिर्फ भेड़ों को, जब आगे उन्हें ऐसे ही बोलते हुए घोड़े मिले तो दोनों भाइयों ने घोड़ों को भी अपने साथ ले लिया और इस तरह शाहिद और हामिद को वफादार कुत्तों के साथ एक एक 12 सिंगा, एक एक भेड़ और एक एक घोड़े का भी साथ मिल गया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। आखिरकार वो सफर करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से दो रास्ते जा रहे थे, और वो इस मुश्किल में पड़ गए कि आखिर कौन सा रास्ता चुने।
फिर उन्होंने कौन सा रास्ता चुना नानी?
उन्होंने बहुत सोच विचार कर ये फैसला लिया कि बड़ा भाई शाहिद सीधे हाथ वाले रास्ते पर जाएगा और छोटा भाई हामिद उल्टे हाथ वाले रास्ते पर।
तो नानी वो लोग अलग हो गए?
हाँ बच्चों, मगर अलग होने से पहले उन्होंने एक पेड़ पर अपने अपने चाकू टांग दिए और चाकू में एक जादुई मंत्र पढ़ा, जिससे अगर कोई भाई मुसीबत में रहा तो उसके चाकू में जंग लग जाएगा और दूसरा भाई उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा।
वो जादुई मंत्र क्या था नानी?
वो मंत्र था ABCDEFGHIJKLMNOP।
ये मंत्र थोड़ी है नानी, ये तो ABCD है।
जानती हूँ, आगे सुनोगे?
हाँ नानी, फिर क्या हुआ?
फिर वो अपने तीर कमान, कुत्ते, बारह सिंगे, भेड़ों और घोड़ों को लेकर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। बड़ा भाई शाहिद, जो सीधे हाथ के रास्ते पर चल रहा था, उसे कई दिनों के सफर के बाद एक अजीब सा महल दिखा।
वाओ नानी, कैसा था ये महल?
बहुत बड़ा महल था वो। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी उसकी, और उन दीवारों के बीच एक बहुत बड़ा गेट था, मगर वहाँ कोई नहीं था। बिल्कुल खाली था वो महल।
कैसे नानी?
तुम्हारी तरह शाहिद भी यही सोच रहा था कि वहाँ के लोग कहाँ गए। इतने में अचानक एक खिड़की खुलने की आवाज आई। जब शाहिद की नजर वहाँ पड़ी तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी, जिसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, एकदम शहजादी जैसी। अपने मन में बहुत से सवालों के जवाब के लिए वो इस लड़की के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और ये महल इतना सुनसान क्यों है? इस सवाल पर जवाब देते हुए उस लड़की ने कहा, मैं इस महल की बदनसीब शहजादी हूँ और यहाँ के सिपाही, नौकर चाकर, हाथी घोड़े और बादशाह सब पत्थर के बन चुके हैं।
पर सब पत्थर के कैसे बन सकते हैं नानी?
शाहिद ने भी यही सवाल किया, कैसे? इस पर शहजादी ने बताया कि इस जंगल में एक सफेद हिरनी रहती है जो कभी कभी नजर आती है। जो भी उसके पीछे जाता है वो पत्थर का बन जाता है, और जो लोग पत्थर के बन गए हैं वो तभी जिंदा हो पाएंगे जब कोई बहादुर इंसान उस सफेद हिरनी को मार गिराएगा।
तो क्या नानी वो सफेद हिरनी अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी?
हाँ बच्चों, और इसीलिए शाहिद ने उस शहजादी से कहा, अब आप बिल्कुल फिकर ना करें, मैं और मेरे साथी उस सफेद हिरनी को मार गिराएंगे। इतना कहकर वो सफेद हिरनी की तलाश में निकल पड़ा, और कुछ समय बाद उसे वो सफेद हिरनी दिखाई दी। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और हिरनी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी वो हिरनी का शिकार नहीं कर पाया और वो भाग निकली। शायद थक चुका था और उसे प्यास भी लग रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उसे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी।
क्या वो बुढ़िया आप जैसी थी नानी?
हाँ, पर मुझसे थोड़ी कम खूबसूरत थी।
नानी अब आगे बताओ ना, क्या हुआ?
फिर शाहिद जैसे ही उस बुढ़िया के पास पहुंचा, बुढ़िया ने उससे कहा, आओ बेटा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, लो पानी पी लो। जैसे ही शाहिद ने पानी पिया, वैसे ही वो पत्थर का बन गया और उसने बाद में सभी जानवरों को पानी पिलाकर उन्हें भी पत्थर का बना दिया।
और नानी, वो छोटे भाई हमिद का क्या हुआ?
वो अपने सफर में आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़े शहर में जा पहुंचा, जहां बहुत से लोग थे, मगर सब डरे हुए और उदास थे।
ऐसा क्यों नानी?
ऐसा इसीलिए क्योंकि उस सुंदर शहर में एक समुद्री राक्षस आया हुआ था, जो वहां के बादशाह की बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था। इस डर के कारण बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया था कि जो बहादुर इंसान उस राक्षस को मारेगा, उससे वो अपनी बेटी की शादी करवा देगा। कई लोग उस राक्षस को मारने आए, मगर वो इतना ताकतवर था कि सभी को खा गया। इसलिए राजा ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देंगे। ये सुनकर हामिद ने फैसला किया कि अब वो उस राक्षस से लड़ेगा। और फिर उसने एक लोहार के पास जा करके बहुत ही मजबूत तलवार बनवाई। दूसरी सुबह सूरज निकलने से पहले हामिद अपने साथियों के साथ समंदर के नजदीक एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गया। कुछ देर बाद शहजादी बग्गी में बैठकर आई। बग्गी से उतरकर वो धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ने लगी। शहजादी जैसे ही समुंदर के पास पहुंची, समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। चारों तरफ जैसे अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी और फिर बहुत ही खौफनाक तीन सिर वाला राक्षस समंदर से बाहर निकला। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली।
नानी, शहजादी को वहां से भाग जाना चाहिए, वरना वो राक्षस उन्हें खा लेगा।
नहीं बच्चों, शहजादी तो बहुत बहादुर लड़की थी, इसीलिए तो वो हिम्मत के साथ वहां खड़ी रही।
आगे क्या हुआ?
वो राक्षस शहजादी को ले जाने ही वाला था कि हामिद और उसके साथियों ने उस राक्षस पर हमला कर दिया। कुत्ता, घोड़ा और बारहसिंगा उस राक्षस पर टूट पड़े और पहला मौका मिलते ही हामिद ने अपनी मजबूत तलवार से उस राक्षस की तीनों गर्दन धड़ से अलग कर दी।
ये! हामिद इज़ अ हीरो!
हामिद की बहादुरी देखकर शहजादी बहुत खुश हुई और उसे अपने साथ दरबार ले गई। बादशाह ने शहजादी को जिंदा देखकर उसे अपने गले से लगा लिया। हामिद की बहादुरी के बारे में सुनने के बाद बादशाह ने हामिद से कहा, हम अपने वादे के अनुसार आपकी शादी शहजादी से करवाने का ऐलान करते हैं। पर ये सुनकर हामिद ने बादशाह से कुछ दिन रुकने के लिए कहा, ताकि वो अपने भाई और अपने अब्बा को वहां ला सके। और दूसरी ही सुबह हामिद अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। और लंबे सफर के बाद वो उस पेड़ के वहां पहुंच गया, जहां उसने और उसके बड़े भाई शाहिद ने चाकू टांगे थे, याद है ना?
हाँ नानी, फिर क्या हुआ?
हामिद ये देखकर हैरान रह गया कि उसके भाई शाहिद के चाकू में जंग लगी हुई है। वो समझ गया कि शाहिद जरूर किसी मुसीबत में है और अपने भाई के मदद के लिए वो फौरन उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां शाहिद गया था। उसी महल के वहां पहुंचकर उसने खिड़की में खड़ी शहजादी से अपने भाई शाहिद के बारे में पूछा। तब शहजादी ने उसे पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनने के बाद हामिद ने उस सफेद हिरनी को मारने की कसम खाई और उसकी तलाश में निकल गया। कुछ समय की तलाश के बाद उसे सफेद हिरनी दिखाई दी। वो शाहिद की तरह तेजी से उसका पीछा करने लगा, मगर कुछ देर बाद हिरनी गायब हो गई। हामिद थक चुका था। तभी उसे वहीं झोपड़ी में बैठी हुई बुढ़िया दिखाई दी, जो शाहिद को दिखाई दी थी। हाँ, वो पानी की तलाश में उस झोपड़ी के पास गया। हामिद जैसे ही बुढ़िया के पास पहुंचा, उससे बुढ़िया ने कहा,
अरे बेटा, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हें प्यास लगी होगी, ये लो पानी पी लो।
हामिद को ये पानी नहीं पीना चाहिए नानी, वरना वो भी पत्थर का हो जाएगा।
हाँ बच्चों, मगर उसे ये बात नहीं पता थी। हाँ, मगर हामिद अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था, इसलिए उसने बुढ़िया से ग्लास लिया और अपने साथियों को पानी पिलाने के लिए उनकी ओर बढ़ा। ये देखकर बुढ़िया ने गुस्से में कहा,
पहले ये पानी तुम पियो, फिर बाद में अपने साथियों को पिलाना।
ये सुनकर हामिद समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसने अपने साथियों को जैसे ही वो पानी पिलाया, वो सब के सब पत्थर के बन गए। ये देखकर हामिद गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने चाकू से बुढ़िया पर हमला कर दिया, मगर उसका चाकू बुढ़िया को छूते ही पानी में बदल गया। हामिद समझ गया कि बुढ़िया की जान उसकी पानी के घड़े में है, इसलिए वो तेजी से घड़े की ओर बढ़ा और घड़ा फोड़ दिया। मटके के फूटते ही सभी लोग, जो पत्थर के बन गए थे, वापस अपने असली स्वरूप में आ गए। और इस तरह हामिद ने पत्थर में बदल चुके सभी लोगों को वापस जीवन दिया। सभी के जिंदा होने के बाद वो अपने भाई शाहिद को ढूंढने लगा, और शाहिद के मिलते ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। सबने मिलकर हामिद का शुक्रिया अदा किया, और बूढ़े बादशाह को जब जिंदगी मिली, तो उसने अपनी शहजादी की शादी शाहिद से करनी चाही, जो शाहिद ने मान ली। दोनों भाई अपने अब्बा को लेने गांव गए। पहले बड़े भाई शाहिद ने निकाह किया, फिर छोटे भाई ने, और इस तरह वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।
वाओ नानी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
कि नानी, हमें घूमना चाहिए।
हाँ, और हमें बिना डरे मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है।
ये है ना।